ఓం శాంతి. ఆవాజ్ తో అయింది. ఓం శాంతి. అప్పుడే కొంచెం ఆవాజ్ అయ్యి ఏక మాట రోడ్ బోలియే. ఓం శాంతి. బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్. ఆజ్ ముజే ఏక ఐసీ విభూతి కా పరిచయ కరానే కా ఆదేశ్ హువా హై జిన్కో కుచ్ వర్షో పహలే తో మేయర్ జయప్రకాశ్ జీ జానతే థే, పర్ కుచ్ వర్షో బాద్ మే ఆజ్ ఇన్కో పూరా విశ్వ జాననే లగ్ గయా. డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ గుప్తా, ఎండిఎం, ఎఫ్ఐఏఈ, ఎఫ్సిసిపి, ఎఫ్ఐఎంసిఎస్ఏ, హమారా ఆప్సే బహుత్ పురాణ సంబంధ రహా హై. డాక్టర్ సాహబ్ కే దిమాగ్ మే దిల్ మే ఏక్ బాత్ ఆతీ థీ కి జో హృదయ రోగ హై యే భీ ఏక్ వికార్ హై, ఔర్ జైసే దూసరే వికారో కా ఇలాజ్ హోతా హై వైసే ఇస్కా భీ వికార్ హోనా చాహియే. పర్ ఉస్ సమయ వరల్డ్ కే కోయి కార్డియోలోజిస్ట్ ఇస్ బాత్ కో నహీ మాన్తే థే కి హృదయ రోగ కా హృదయ సే కోయి సంబంధ హై. వో సమజ్తే థే ఫిజికలీ హార్ట్ మే గడబడ్ హో జాతీ హై, కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ హో జాతీ హై, ఔర్ కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ హోనే కే కారణ సే హార్ట్ మే జో రక్త ధమనియా హోతీ హై ఉన్మే రుకావట్ ఆ జాతీ హై, జిస్కా ఆపరేషన్ కర్నే సే ఇలాజ్ హో సక్తా హై. వరల్డ్ కే కార్డియోలోజిస్ట్ కభీ యే నహీ మాన్తే థే కి హార్ట్ కి రక్త కి ధమనియా మే కోయి రుకావట్ హో జాయే తో ఉస్కా రిగ్రెషన్ హో సక్తా హై, బైపాస్ కే అలావా కోయి ఇలాజ్ నహీ హై యే మాన్నా హోతా థా. ఔర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్హోనే వరల్డ్ మే కార్డియోలోజిస్ట్ కో యే బతాయా అప్నే ఎక్స్పెరిమెంట్ సే కి బ్లడ్ కే అందర్ జో రక్త కి ధమనియా హై, హార్ట్ కే అందర్ జో రక్త కి ధమనియా హై, ఉన్మే జో కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ హోతా హై ఉన్కా రిగ్రెషన్ హో సక్తా హై. ఔర్ వో రిగ్రెషన్ హో సక్తా హై రాజయోగ ఎడ్యుకేషన్, రాజయోగ కి ప్రాక్టీస్ సే. ఔర్ ఇస్ పర్ ఇన్హోనే బహుత్ శోధ్ కియా, బహుత్ రిసర్చ్ కియా, బహుత్ మెహనత్ కీ. కరీబ్ 8 సాల్ తక్ ఆప్నే బహుత్ మెహనత్ కీ, సబ్ జగహ రిసర్చ్ కర్కే పేపర్స్ భేజే, సబ్కో సమ్ఝాయా. ఔర్ అబ్ కరీబ్ 4 సాల్ 5 సాల్ పహలే నీచే శాంతివన్ మే ఇంటర్నేషనల్ కార్డియోలోజిస్ట్ కీ కాన్ఫరెన్స్ కీ 2 కాన్ఫరెన్స్ హుయీ థీ, ఔర్ జిస్మే హమారే పూర్వ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం సాహబ్ భీ ఆనే వాలే థే, పర్ ఉన్కీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హుయీ థీ కరీబ్ 30-40 మినట్ తక్. ఔర్ తబ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఔర్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కీ ఔర్ ఉన్హోనే పార్టిసిపేట్ కియా థా, వరల్డ్ కే కార్డియోలోజిస్ట్ ఆయే థే. ఔర్ తబ్ ఉన్హోనే పహలే టైమ్ డాక్టర్ సాహబ్ నే జో ఏక్ ఫార్ములా దియా థా, ఏక్ ప్రిన్సిపల్ దియా థా, ఏక్ అమౌంట్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ కియా థా, డిక్లేరేషన్ దియా థా కి జబ్ తక్ హమ్ సోల్ కా ఇలాజ్ నహీ కరే, మైండ్ కా ఇలాజ్ నహీ కరే, బాడీ కా ఇలాజ్ నహీ హో సక్తా. సోల్ మైండ్ అండ్ బాడీ కా జో ఏక్ డిక్లేరేషన్ దియా ఆప్నే ఉస్కో వర్ల్డ్ కే కార్డియోలోజిస్ట్ నే మానా. ఔర్ ఉసీ కే అనురూప్ యహాన్ నీచే శాంతివన్ మే గ్లోబల్ హాస్పిటల్ కే తత్వాధాన్ మే ఆప్ క్యాంప్స్ ఆయోజిత్ కర్తే హై. ఔర్ ఉన్ క్యాంప్స్ మే వో హార్ట్ పేషెంట్ ఆతే హై జిన్కీ రక్త కీ ధమనియా 100% తక్ బ్లాక్ హోతీ హై. ఔర్ ఐసే కయీ ఉదాహరణ హై, మేనే తో పర్సనలీ దేఖే హై, మేనే మేరా ఖుద్ కా ఉస్మే రిగ్రెషన్ హువా హై, ఐసే ముజే పర్సనలీ మాలూమ్ హై కి కిస్ తరహ సే రాజయోగ కీ ప్రాక్టీస్ సే రక్త కి ధమనియా ఖుల్ జాతీ హై బినా ఆపరేషన్ కే, బినా కిసీ ఖర్చే కే. వరల్డ్ కా ఏక్ 8వా చమత్కార్ కయీ హై ఇస్కో జో హై. ఔర్ హమారే సామ్నే యే జేపీ సాహబ్ బైఠే హై, ఖడే హోయే ఏక్ మినట్ బతాయే అప్నా ఆప్ కో. యే భీ ఉస్ క్యాంప్ కే పహలే స్టూడెంట్ రహే, మే భీ ఉసీ క్యాంప్ కా స్టూడెంట్ రహా హూం. ఔర్ హమారే సబ్ కే బ్లడ్ మే జో రక్త కి ధమనియా మే జో కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ థా ఉస్కా సిర్ఫ్ రాజయోగ కీ ప్రాక్టీస్ కే ద్వారా హీ రిగ్రెషన్ హువా హై, వరల్డ్ కా ఏక్ చమత్కార్ హై. ఐసీ విభూతి కో ఆప్కే సామ్నే మే ఇంట్రోడ్యూస్ కర్ రహా హూం. ప్రెజెంట్లీ ఆప్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియోలోజీ అండ్ మెడిసిన్ జే బాటుమల్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ అండ్ రిసర్చ్ సెంటర్ మౌంట్ అబూ అండ్ ఇట్స్ బ్రాంచ్ ఎట్ అబూ రోడ్ సిన్స్ అప్రిల్ 1995. ఆప్కి క్వాలిఫికేషన్ సో బహుత్ హై, ఎంబీబీఎస్ హై, ఎండీ హై, ఎఫ్సీసీపీ హై, లాంగ్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కార్డియోలజీ ఆఫ్ సర్ గంగారామ్ హాస్పిటల్ అండ్ ఎస్కోర్ట్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, ఎఫ్ఐఏఈ ఫెలోషిప్, అవార్డెడ్ బై ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఈకో కార్డియోగ్రఫీ, ఫిమ్సా ఫెలోషిప్ అవార్డెడ్ బై ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ సైన్స్ అకాడమీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సిసిస్ ఎండీ పిహెచ్డి డిఎన్బి, మెంబర్ ఆఫ్ ది నేషనల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఇండియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ కార్డియోలజీ, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అకాడమీ ఫార్ ఎ బెటర్ వరల్డ్, లైఫ్ మెంబర్ కార్డియోలజీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ కార్డియోలజీ, ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ క్యాస్ బహుత్ లంబా ऐसा नहीं है कि मैं सारा समय ले लूं, इसलिए मैं मुख्य मुख्य कुछ बातें बताऊंगा। ही वॉज अवार्डेड हर एक्सीलेंसी अवार्डेड बाई हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा पाटिल फॉर एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी ऑन 22 सितंबर 2008 एट राष्ट्रपति भवन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी प्रेजेंटेड बाई हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन 2006 एट राष्ट्रपति भवन। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलिंग इन मेडिसिन फॉर द 21st सेंचुरी अवार्ड बाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एन आई ए ई डब्ल्यू पी फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिसिन फॉर द ईयर 2005। 2000 मिलेनियम मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम ए बी आई यूएसए इन होलिस्टिक हेल्थ केयर। ऑन गोइंग रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड पब्लिश एंड प्रेजेंटेड 21 रिसर्च पेपर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। रिसर्च स्टडी एंटाइटल्ड रिग्रेशन ऑफ कोरोनरी एथेरल साइंस थ्रू हेल्दी लाइफ स्टाइल इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट माउंट अबू ओपन हार्ट ट्रायल हैज बीन पब्लिश इन इंडियन हार्ट जर्नल इंडियन हार्ट जे 2001। सो आपका एक बहुत लंबा बायोडाटा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने पर्सनली आपके कॉन्टेक्ट में अपने आप को भी हार्ट की प्रॉब्लम से रिलीव किया था, रिग्रेशन ऑफ आर्टिलरी हमारे भी हुआ था, और इतना ही कह सकता हूं कि हम एक वंडरफुल विभूति से आज रूबरू हो रहे हैं। और आपके स्वागत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया जोरदार तालियों से इस हॉल को भेजा दें, जोरदार तालियों। थैंक यू वेरी मच। जो ब्रदर्स एंड सिस्टर पीछे बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा प्लीज सब आगे आ जाएं। जो पीछे बैठे हैं, हमें बैक बेंचर्स नहीं रहना है, लीडर बनना है, लीडर हमेशा आगे रहता है। प्लीज कम फॉरवर्ड, जो भी वो पीछे बैठे हुए हैं प्लीज आगे आ जाइए, प्लीज आगे आ जाइए।
ओम शांति। माय टॉक शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी? जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे विश्व में, हमारे भारत में विशेष और सारे विश्व में जनरली बीमारियां बहुत सारी हैं और दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, कम हो रही हैं? डॉक्टर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना? तो क्या कारण है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं? डॉक्टरों के कारण, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं इसलिए, ऐसा तो नहीं ना? तो आज जो है हमारी जो हेल्थ केयर है, ये तो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू का है, ये नीचे एक ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, अगर टाइम मिले तो आप आइएगा। ये शांतिवन है कॉम्प्लेक्स जहां पर आजकल हम प्रोग्राम रन करते हैं। आज की जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो सिर्फ वन डायमेंशनल है, इट एड्रेसेस ओनली टू द बॉडी। जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, जितनी भी मेडिसिंस बन रही हैं, जितनी भी सर्जरीज हम कर रहे हैं, वो सारी किस पर होती हैं? बॉडी पर होती हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में या विदेश में, वो सिर्फ बॉडी के बारे पढ़ाते हैं। चाहे हम कोई भी डिग्री पास करें, एमबीबीएस करें, एमडी करें, डीएम करें, एफआरसीपी करें, एफआरसीएस करें, सब में ही लेवल ऑफ एजुकेशन हमारा जो सीमित है वो बॉडी तक है। और आज हम जानते हैं कि 95% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब है साइकी मीन्स माइंड और सोमा माने बॉडी। तो पहले बीमारी मन में आती है, फिर बॉडी में आती है। और जबकि हम इलाज सिर्फ बॉडी का कर रहे हैं, आत्मा के बारे में और मन के बारे में कोई पढ़ाई नहीं कर पाई जाती है। और आज अगर मॉडर्न ब्रेक थ्रूज देखें मेडिसिन में क्या है, मेडिकल फील्ड में क्या मॉडर्न ब्रेक थ्रूज हैं, एक तो नई नई दवाइयां आ गई हैं, लेजर थेरेपी आ गई है, जीन थेरेपी आ गई है, बहुत ही कॉस्टली हैं और इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। काफी सारे लोगों की मॉर्टिलिटी अगर प्रॉपरली ना की जाए तो जीन थेरेपी में मॉर्टिलिटी बढ़ जाती है। स्टेम सेल थेरेपी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। हाईटेक सर्जिकल प्रोसीजर्स, आजकल रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं जो बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी करते हैं, पर कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं? वो सर्जरी नॉर्मली 50,000 में होती है, रोबोटिक सर्जरी जो है 2,00,000 में होती है, तो रेट 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो है, ये प्रोसीजर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, और बहुत ही बड़ी बड़ी सिटीज में ये चीजें अवेलेबल हैं, जबकि भारत जो है लगभग आज भी 70% भारत कस्बों में और गांव में बसता है, सब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और रियल ब्रेक थ्रू क्या है, आज रियल रिसर्च क्या हुई है, जो पिछले कुछ सालों से सारा विश्व इस बात को मानता है, वो है चेंज इन लाइफस्टाइल, जीवन शैली में परिवर्तन। और ये जीवन शैली का परिवर्तन जो है, इट इज एज पावरफुल एज ड्रग्स एंड सर्जरी, समटाइम्स इवन मोर पावरफुल। ये इतना ही इफेक्टिव है जितना कि दवाइयां और ऑपरेशन, और कई बार उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। सर्जरी करते हैं, दवाई खाते, कुछ समय असर करती है, कि तो जीवन शैली अगर आप परिवर्तन कर ले तो सारी उम्र आपको फायदा होता है उससे। कि जीवन शैली परिवर्तन करने से खाली आपकी एक एक अंग पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जीवन शैली का असर बॉडी की हर कोशिका पे पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो लगभग जो भी बीमारियां हैं मन की और तन की खत्म हो जाती हैं, अगर अपना जीवन का जीने का ढंग बदल लेते हैं तो। जैसे कहते हैं ना, आजकल शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री कहते हैं ना, एक एक खरीदो दो एक साथ में फ्री मिलेगा। यहां पर अगर आप जीवन शैली परिवर्तन कर लें तो एक बीमारी जिस बीमारी के लिए करते हैं वो बीमारी तो खत्म हो ही जाती है, किंतु साथ साथ 10 बीमारी और खत्म हो जाती है। जो भी बीमारियां हों, पूरी बॉडी की और मन की, डिप्रेशन है, नींद का ना आना, या आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एसिडिटी, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, यू नेम ए डिजीज, आप कोई बीमारी बताएं। जैसे इस हार्ट के प्रोग्राम में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी दसियों बीमारियां, जो भी मन और तन के रोग हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और काफी सारी बीमारियां ऐसे 20-30 साल पुरानी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये इसमें 5 बातें आपको परिवर्तन करनी है, ये आपके अपने हाथ में है। हाउ वी रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, तनाव हम सबके जीवन में है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो धरती पर, मैं तो नहीं समझता कोई ऐसा व्यक्ति, आप में से भी कोई होगा, है ऐसा कोई व्यक्ति उसको तनाव ना होता, टेंशन ना होती हो? हाथ उठाएं, जिनको कभी टेंशन नहीं होती, कभी भी टेंशन नहीं होती, कोई भी नहीं है, सभी को तनाव है ना। जयप्रकाश जी तो अभी इम्यून हो गए ना, आपका नाम ही जयप्रकाश है तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो हाउ वी रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, हम तनाव को कैसे, उस तनाव को कैसे मैनेज करें, ये हमारे अपने हाथ में है। चाहे तो हम तनाव में बहुत परेशान हो जाएं और उसकी सही विधि आप सीख लें, आपको यहां सिखाई जाएगी या सिखाई गई होगी, तो आज भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि कैसे हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो तनाव से मुक्ति कैसे पाएं, ये आपके अपने हाथ में है। दूसरी बात, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, ये भी हमारे अपने हाथ में है। हमें कोई जबरदस्ती खिला नहीं सकता है, हम हमारी अपनी चॉइस है, हम हेल्दी खाते हैं, हेल्दी डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट खाते हैं, या अनहेल्दी सिर्फ जीभ के स्वाद के वश होकर खाते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। फिर स्मोक और नॉट, सिगरेट बीड़ी पीते हैं कि नहीं पीते, बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है आज समाज में सिगरेट बीड़ी पीना। आप सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हैं किंतु आपके घर वाले पीते हैं, आपके दोस्त पीते हैं, तो उसका असर भी आपके ऊपर होता है। तो स्मोक और नॉट, ये एक बहुत आपके अपने ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और चौथा है एक्सरसाइज और नॉट, आप सैर करते हैं कि नहीं सर करते हैं। सैर करना कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप करें या ना करें, जैसे आप सांस लेना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, ऐसे ही सैर करना, रोज प्रतिदिन सैर करना, 45 मिनट सैर करना बहुत बहुत आवश्यक है हर मनुष्य के लिए। या तो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, किसी प्रोफेशन के हो, सबके लिए सैर करना, बिना सैर किए नाश्ता करना अपराध है। आप में से कितने लोग सैर करते, कितने सैर नहीं करते हैं, हाथ उठाएं, गलत करते हैं ना। सैर करना ये नियम बना लीजिए जीवन में, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं कि हमें सैर किए बगैर नाश्ता नहीं करना है। हर एक के लिए, कितने भी बिजी हो आप सांस लेना रोकते नहीं है, रोकते हैं क्या? आज बहुत बिजी है, सांस लेना बंद बोलते तो हैं, मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी सांस लेते तो है ना? नहीं, नहीं? पानी पीना बंद करते हैं क्या? जैसे सांस लेना बंद नहीं करते हैं, पानी पीना बंद नहीं करते हैं, ऐसे ही सुबह के समय सैर करना अति आवश्यक है, सूर्य उदय के बाद और पेट साफ करने के बाद, नहा लीजिए उसके बाद सैर करना अति आवश्यक है। फिर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, पांचवी बात है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सपोर्ट्स, हमारे संबंध आपस में कैसे हैं, घर में पति पत्नी का संबंध, मां बाप से संबंध, बच्चों से संबंध, हमारे दोस्तों से, दोस्तों से आपस में संबंध कैसा संबंध है, वो भी हम खुद ही बना सकते हैं। हम कैसा व्यवहार करते हैं आपस में दूसरे के साथ, रेस्पेक्ट आदर करते हैं दूसरे को नहीं करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और सपोर्ट सिस्टम हमारे कैसे हैं, ये पांच बातें सिर्फ आप बदल लीजिए तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां मन की और तन की सब भाग जाएंगी। ये पांच बातें आज दुनिया इसको समझ चुकी है, मैं समझता हूं हम सब समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। और एक और बात, आज हम लोग कई बार ये कहते हैं कि नहीं ये तो डिजीज हमारी जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक माना हमें मां बाप से अनुवांशिक तौर पे मिली है, वर्से में मिली है। हमारे पिताजी को हार्ट की बीमारी थी, हमारे पिताजी को मां को डायबिटीज थी तो हमें भी हो गई है ना। तो ये जो अनुवांशिक डिजीज हैं, बीमारियां जो हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुई थी फरवरी 2009 में, ये पेपर पब्लिश हुआ था और ये रिसर्च जो है इस पर ही नोबेल प्राइज मिला, इसका एजिंग के ऊपर मिला था। उसका बेसिक यही था कि मेडिटेशन, डाइट, भोजन, संतुलित भोजन है ना, और साथ में लाइफस्टाइल, मतलब सोने का समय, उठने का समय, सैर करना, ये सब बातें उसमें आती हैं। चेंजेस में इवन चेंज जीन एक्सप्रेशन इन हंड्रेड्स ऑफ जीन्स इन ओनली अ फ्यू मंथ्स। आपको बीमारी के जीन्स हैं, सैकड़ों जीन बीमारी के जीन आपके अंदर हो सकते हैं, वो कुछ ही महीने में अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, भोजन संतुलित करते हैं और अपना जीवन शैली को परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके अंदर वो जीन्स, बीमारी के जीन्स कुछ ही महीने में बदल जाएंगे। अर्थात जो आपके माता पिता को बीमारी थी, आपके घर में बीमारी चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बीमारी आपको नहीं होगी। लैंसेट में पब्लिश हुआ यह आर्टिकल, जीन्स एसोसिएटेड विद सीएडी, कैंसर, ओबेसिटी, सीएडी मतलब हार्ट डिजीज, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, कैंसर होता है, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन अर्थात गठिया, अगर आपको गठिया का रोग है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, वह डाउन रेगुलेटेड और टर्नड ऑफ। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डाइट ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल बदल लेते हैं तो आपके वो जीन्स टर्न ऑफ हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ऑफ माना बंद हो जाएंगे, उनका असर आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। वेयर एज प्रोटेक्टिव जीन्स वर अपरेगुलेटेड और टर्न ऑन, और जो अच्छे जीन्स हैं, बीमारी से बचाने वाले जीन्स हैं, वो आपके जीन्स एक्टिव हो जाएंगे। राइट क्या ख्याल है आपका, करना चाहते हैं? वेरी गुड। और वैसे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारा हेल्थ केयर, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हमारी जो वो क्या होनी चाहिए, भारत में इवन विदेशों में भी, अमेरिका में भी, यूके में भी, डिजीज केयर, वो बेसिकली डिजीज केयर सिस्टम है। बीमारी होने के बाद इलाज करते हैं, बीमारी होने से पहले डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है, जाते हैं? या गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ नहीं बना रही है कि इसमें, जिससे कि बीमारियां हो ही ना। अगर हम यूएसए में बात करें, 2008 में उन्होंने लगभग $2100 बिलियन खर्च किए, जो कि उनका 17% के लगभग था उनका जीएनपी का, और उन्होंने सिर्फ बीमारी को, बीमारी होने के बाद उसका इलाज किया, लगभग 95% जो मनी थी, इसकी $2100 बिलियन की जो मनी थी, इसमें से 95% बीमारी होने के बाद पैसा खर्च किया गया। और एक स्टडी थी, इंटर हार्ट स्टडी, लैंडमार्क स्टडी है, वर्ल्ड का एक बहुत ही माइलस्टोन स्टडी है, उसमें बताया गया था कि इसमें 30,000 लोगों को लिया गया था, मेन एंड वुमेन, जो आदमी और औरत, 52 देशों से, पांचों महाद्वीप से लिए गए थे। उसमें बताया गया कि अगर हम जीवन के कुछ रिस्क फैक्टर, नो रिस्क फैक्टर उन्होंने लिए थे, अगर उसमें हम कुछ, इसमें एक मेंटल स्ट्रेस, तनाव भी एक कारण था, इससे जो है हार्ट की बीमारी को कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम जीवन शैली को बदल लें तो लगभग 90% से अधिक हार्ट की बीमारी को खत्म कर सकते हैं सिर्फ जीवन शैली बदलने से। एक फूड के बारे में, अन्न के बारे, जैसे मैं आपको बात की, एक अन्न, एक भोजन के बारे में मैंने बात की। भोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहते ना जैसा अन्न वैसा मन, इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ये एक आर्टिकल है, ए हेल्दी बॉडी ए हेल्दी माइंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ डाइट ऑन मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन। कैसा अन्न हम खाते हैं, कैसा भोजन हम करते हैं, उसका आपके मूड पर और आपके कॉग्निटिव फंक्शन पर क्या असर होता है। कहते फूड से मूड बदलता है ना, आपको बहुत जो सो कॉल्ड जीभ का स्वाद वाला फूड मिल रहे ना आपको, टेस्ट वाला, भले बॉडी के लिए हार्मफुल है पर आपका मूड बदल जाता है, खुश हो जाते हैं। बरसात में पकौड़े खाने को मिले तो खुश हो जाते हैं ना आप लोग, नहीं सभी खुश हो जाते हैं। किंतु इसके अपोजिट भी है, इसके अपोजिट ये है, फूड मूड एंड एपेटाइट। जस्ट एज फूड्स डिटरमिन अवर मूड्स, सो डू अवर मूड्स डिटरमिन व्हाट वी ईट। जैसे फूड से हमारा मूड बदल जाता है, ऐसे मूड से भी हमारा फूड बदलता है। जैसा आपका मूड होगा फिर वैसा खाने खाने को दिल करेगा। जैसे आपके मन में कड़वाहट है, मन में बिटरनेस, संबंधों की कड़वाहट आपके मन में आ गई है, तो क्या खाने को दिल करता है, उसका अपोजिट मीठा खाने को दिल करेगा, भले आपको डायबिटीज हो। ऐसे 100 से ज्यादा मूड स्टडी हुए हैं। अगर बहुत ड्राई महसूस कर रहे हैं अंदर से, आप शुष्क महसूस करते हैं, तो आपको अंदर से फ्राइड खाने, तला हुआ कुछ खाने को दिल करेगा। अगर बहुत बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो चटपटा खाने को दिल करेगा। ऐसे बहुत सारे, बहुत तरह के मूड स्टडी किए गए हैं और परवश होकर खाते हैं हम लोग, है ना। और आज जैसे मैंने बताया आपको, आज 95% से अधिक बीमारियां स्ट्रेस रिलेटेड हैं, तनाव से उनका कनेक्शन है, और इसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, अर्थात साइकी पहले मन में आती है फिर बॉडी में आती है। इस पर काफी काम हुआ है, पीएनआई हम कहते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उसमें काफी, और पीएनई भी बोलते हैं, साइको न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी, कि कैसे हमारे विचारों का असर हमारे मन पर होता है, हमारे ब्रेन पर होता है, उसका असर कैसे हमारे हार्मोन्स पर होता है, और कैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है हमारी उस पर कैसे असर पड़ जाता है, और कैसे फिर हमें बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां हमको हो जाती हैं। सॉल्यूशन क्या है, क्या करें अब हम ऐसे। अगर हमने एक बार, एक सर्वे हुआ था भारत में, भारत की चार बड़ी बड़ी सिटीज में, तो पाया गया कि सिटीज में एडल्ट्स को यह सर्वे किया गया था, तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं एवरेज, मतलब हर आदमी को, आप भी अपने अंदर देखेंगे तो आपको दो बीमारियां आपको अपने अंदर मिल जाएंगी। एवरेज एक आदमी को दो बीमारी है ही है, आप देख के सोच के देखो अपने अंदर है दो बीमारियां, दो से तीन भी मिलेंगी, है ना। इंग्लिश में बोलूं, मुझे तो बहुत सहज है इंग्लिश में बोलना, ठीक है इंग्लिश में, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, अच्छा नहीं तो इंग्लिश में बोलूं, इंग्लिश में अच्छा ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता हूं, ठीक थोड़ा हिंदी वाले समझ ले, थोड़ा इंग्लिश वाले समझ ले, नहीं हाँ लिखा तो हुआ है, हाँ जी ठीक है, मैं स्लो बोलता हूं, आप मुझे पहले बोलते मैं स्लो बोलता था, ठीक ओके, स्लो माना धीरे धीरे बोलूं, ओके अच्छा ठीक है, ओके ओके। देखिए पहले एक मॉडल ऑफ हेल्थ था बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, शुरू में इस मॉडल ऑफ हेल्थ में क्या था कि एक इंसान की बॉडी को मान लिया जाता था, उसमें कुछ बचपन से डिफेक्ट भी हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जन्म से बीमारियां हो सकती हैं, और उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस सिचुएशंस एनवायरमेंट आसपास का उसका क्या असर होता है, तो इसके हिसाब से बीमारी होती है। ये हमें 1976 तक यही मानते थे कि इंसान एक विक्टिम है, ह्यूमन बींग एक विक्टिम है, उसको आकर बीमारी होती है और उसका समाज का, गवर्नमेंट का उसका फर्ज है उसको ठीक करना। इसलिए आपने देखा होगा भारत में भी 1980 तक, बल्कि भारत में ऐसा था कि ये टोटली स्टेट सब्जेक्ट था और सब हॉस्पिटल में दवाइयां फ्री थी, एडमिशन फ्री, इसलिए आपको हॉस्पिटल पहुंचना है और वहां जाके उसका इलाज फ्री होता था। तो ये तब तक ऐसा मानते थे, किंतु फिर एंजल, एक मिस्टर एंजल थे, उन्होंने कहा नहीं, एक बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ दिया, और उन्होंने कहा कि खाली बॉडी की बात नहीं है, मन का असर बीमारी, मन का असर हमारी बॉडी पर होता है, और सोशल फैक्टर्स, समाज का असर और एनवायरमेंट, वातावरण का असर हमारे ऊपर होता है। और लगभग 70% बीमारियां ऐसी, उस समय ऐसी थी, 70% बीमारियां उन्होंने बताई कि लगभग 70% बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे मन से और वातावरण से पैदा होती है। अर्थात 70% बीमारियां उस समय साइकोसोमेटिक थी। फिर उसके बाद यह बात चली कि जैसे फिर 85 में ही शुरू हो गया था काम इसके ऊपर, जो मैंने बताया पीएनआई के ऊपर, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के ऊपर, साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी के ऊपर काफी काम शुरू हो गया था, कैसे हमारे विचारों का असर हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्मोनल सिस्टम पर, हमारे इम्यून सिस्टम पर काम, काफी रिसर्च हुई। तो उसके बाद ये इस बात पर हम पहुंचे कि सचमुच में हमारा आज का सिस्टम जो है वो एक नया मॉडल ऑफ हेल्थ बनाना पड़ेगा, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ। ये 95 में उन्होंने बताया, इस ऑनर एकर एट ऑल ने, तो इसमें ये बताया कि, और ये जो है उसी समय की बात थी, भारत में भी और देशों विदेशों में भी बर्डन ऑफ डिजीज था, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, वो जो है पहले इन्फेक्शन हुआ करते थे, कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा होती थी, इन्फेक्शन हैं, कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, टीबी हुई, ये मेजर बीमारियां थी उस समय। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, लाइफस्टाइल डिजीज आ गई, क्रॉनिक इलनेसेस, जैसे कि ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जो एवरेज लाइफ आदमी, लाइफ स्पैन बढ़ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, तो ये बीमारियां ज्यादा आ गई, मोटापा आ गया, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गई। आज 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, लगभग 12-13% लोगों को डायबिटीज है, 14-15% लोगों को हार्ट की बीमारी है ना, ये बीमारियां जैसे नई नई बीमारियां, मोटापे, लगभग 40% लोग मोटे हैं, तो इस तरह की बीमारियां ज्यादा मात्रा में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लगभग 50% लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, कैंसर काफी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बीमारी क्रॉनिक इलनेस है, जिनकी जो कि सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीज थी, जिनका कोई इलाज नहीं था, बाईपास करने से हार्ट की बीमारी ठीक नहीं होती, डायबिटीज की दवाई खाने से कोई डायबिटीज ठीक नहीं होती, खाते रहो सारी उम्र ही खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी है ना, कैंसर हो गया, कैंसर की दवाई सारी उम्र ही खानी पड़ेगी, भले आप कीमोथेरेपी भी ले ली, रेडियोथेरेपी कर ली, ऑपरेशन करा ले, उसके बाद भी कैंसर के पेशेंट ही हैं। तो ये बीमारियां जो आ गई, क्रॉनिक इलनेसेस ज्यादा आ गई, तो इन 21st सेंचुरी मोस्ट ऑफ व्हाट वी कैन ऑफर कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड कंफर्ट। आज हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, क्योर नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं कि एट द मोस्ट हम क्या कर पा रहे हैं कि उसमें रिलीफ और कंफर्ट, पेशेंट को रिलीफ, आरामदायक जीवन दे सके उस बीमारी के साथ, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, या ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो, न्यूरोपैथी, उसके साथ आदमी जी सके, अपने काम कर सके, शांति से रह सके, सिर्फ इतना ही हम दे सकते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ की बात आवश्यकता आई। ग्रोइंग एविडेंस फॉर बेनिफिशियल रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ एंड वेलबींग सजेस्ट प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड कंफर्ट। तो स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ, बात में स्पिरिचुअल इसलिए डाला गया कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मैं जो हूं वो अलग है, ये बॉडी अलग है, और आत्मा का शांति, आत्मा का गुण ही शांति और प्यार है, खुशी है। तो अगर आप अपने आप को इससे सेपरेट समझते हैं तो शांति और प्यार तो आपको हमेशा रहेगी, आपके अंदर टॉलरेंस तो आ जाएगी, आप बीमारी के साथ जीना सीख जाएंगे, है ना, उससे मतलब आप सही ढंग से मैनेज कर सकेंगे। फिर बाद में जितने भी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ज्वाइंट कमीशन ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस JACO, ये अब स्पिरिचुअलिटी को अपने मेडिकल प्रैक्टिस और एजुकेशन में लेते हैं, अमेरिका में भी लेते हैं, उन्होंने भी इसको लेना शुरू किया है। इन एडिशन मैनी हैव कॉल्ड फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ एंजल्स बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ केयर टू ए बायोसाइकोसोशल स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ। ये नया मॉडल ऑफ हेल्थ अब सब लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि ये मॉडल ऑफ हेल्थ अब होना चाहिए, और ये बायोसाइकोसोशल मॉडल में रिलीफ रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल सफरिंग। एक तो फिजिकल सफरिंग है आदमी को, किंतु मेंटल सफरिंग भी तो है ना, कहते शरीर में दर्द होता है किंतु मन में क्या होता है, दुख होता है ना? दर्द की दवाई हम इंजेक्शन लगा के दर्द ठीक कर सकते हैं, किंतु मन का दुख कौन से इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं? तो वो मेंटल सफरिंग है, और फिजिकल और स्पिरिचुअल सफरिंग क्या है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई सुख नहीं है, अंदर का सुख नहीं है, मेरे को शांति नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, कि तू शांति नहीं है, तो ये सुख कौन देगा? ये है स्पिरिचुअल सफरिंग। अपने जो हमने पाप किए हैं उनका बोझ, हमसे जो गलतियां हुई हैं, अपराध भावना, वो अंदर उसका बोझ, वो स्पिरिचुअल सफरिंग है। एंड स्पिरिचुअल केयर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग कंफर्ट ऑलवेज। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी सीख जाते हैं तो आप क्या महसूस करेंगे हमेशा? कंफर्ट ऑलवेज, सदा आराम की, शांति की अनुभूति कर सकते हैं, राइट? और फिर हमने ये मैडम ये मॉडल ऑफ हेल्थ या थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर मॉडल, सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, ये हमने 2006 में विश्व को दिया। ये आज बहुत सारे पेपर स्पिरिचुअलिटी इन मेडिसिन, साइंस एंड प्रैक्टिस, इंपैक्ट ऑफ स्पिरिचुअल सिम्टम्स, ये डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हेल्थ आज सब जगह रिकॉग्नाइज हो गए सारे विश्व में। और ये मैस्लोस ट्राइंगल आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। एक इंसान के तीन एस्पेक्ट हैं, स्प्रिट, माइंड और बॉडी, और इन आपस इनका आपस स्प्रिट में ना आत्मा, इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन है। स्प्रिट का माइंड से है, माइंड का बॉडी से है, और बाहर से एनवायरमेंट और सोशल फैक्टर्स, हमारा वातावरण आसपास का और समाज, इसका भी हमारे ऊपर असर होता है। और आज राइट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये डॉक्टर भी पेशेंट बन जाता है। डॉक्टर को भी आज बहुत बीमारियां देखने में आया कि डॉक्टर्स को बीमारी ज्यादा हो रही है, जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा ब्लड प्रेशर है, ज्यादा लोग, ज्यादा डॉक्टर्स ज्यादा मोटे हो गए हैं, डायबिटीज डॉक्टर्स को ज्यादा हो गई, हार्ट अटैक्स डॉक्टर्स को ज्यादा हो रहे हैं, कैंसर डॉक्टर्स को ज्यादा हो रहे हैं। तो जो इलाज कर रहे हैं वही बीमार हो रहे हैं, और आम पॉपुलेशन से ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो आज का इलाज, जैसे डॉक्टर है ये पेशेंट है, तो आज का इलाज सिर्फ मेडिकेशन, सर्जरी और फिजियोथेरेपी, इसी लेवल का इलाज होता है। बस ऑपरेशन कर दिया, दवाइयां दे दी, और जाओ फिजियोथेरेपी करा लो, बस हो गया आपका काम। और जबकि हम मेंटल लेवल पे भी इलाज कर, काउंसलिंग करें, कॉग्निटिव थेरेपी करें, और आत्मा के लेवल पे स्पिरिचुअल काउंसलिंग करें, रहम की भावना और कनेक्शन, एक आत्मा के लेवल पे हम आत्मिक लेवल पे लोगों को ठीक करें, और फिर दोनों अगर मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्शन करते हैं, तो दोनों की हीलिंग होती है। तो ये बेसिकली है थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर। तीनों लेवल पे हम पेशेंट को ठीक करें, है ना, और उससे डॉक्टर भी हेल्दी रहेगा और पेशेंट भी हेल्दी रहेगा। और हेल्थ का जब मीनिंग हम लेते हैं, अगर WHO उसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लें, तो उसमें भी यही मतलब है, रिस्टोरिंग द साउंडनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। खाली तन की बात नहीं करती है डिक्शनरी भी, जब भी हम हेल्थ की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो मन और तन दोनों की बात करते हैं। तो आज के समय की डिमांड क्या है, नीड ऑफ आवर क्या है, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर विच एड्रेसेस जेनेटिक फैक्टर्स। इसे जीन्स भी बदल सकते हो, इसी जीन, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर से आप जीन्स को बदल सकते हो। मेंटल फैक्टर्स, जो आपके अंदर जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी की आदत है, डर है आपके मन में, उसको खत्म कर सकते हैं। और आदमी के अंदर स्ट्रांग विल पावर आ जाती है, कैसी, टू एडहियर टू हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, एंड से नो टू टोबैको एंड एल्कोहल। आज आदमी को पता है, डॉक्टर्स को पता है, हमारे साथी हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं देश विदेश में, और हमारे साथी जो लेक्चर देते हैं डाइट के ऊपर कि हमें ये खाना खाना चाहिए, किंतु बाहर आने के बाद हम देखते हैं लंच में क्या करते हैं वो लोग। अभी लेक्चर देखिए आया, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तला हुआ नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, और बाहर आके देखो तो नॉनवेज की लाइन में लगा होता है सबसे पहले। तो मैंने कहा, मैम, हम पूछते हैं कई बार, मजाक करते हैं कि अभी तो आपने लेक्चर देने ही खाना चाहिए, कहते हैं यार वो तो लेक्चर देने के लिए था ना, खाने की मना थोड़ी ना मेरे को, है ना। फिर देखो वो नॉनवेज भी खाएगा, फिर वो हलवा भी खाएगा, फिर ऊपर से आइसक्रीम भी खाएगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं, है ना, और उसके ऊपर अंदर बता के ऐसा हार्ट के लिए डैमेजिंग है। तो खाली खाली नॉलेज होना काफी नहीं है, उस नॉलेज को अप्लाई करना आवश्यक है। खाना खाना खाली आवश्यक नहीं है, उसको पचाना भी आवश्यक है, तब तो ताकत आएगी। तो आज सुनना, आज हम जानते बहुत कुछ है टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किंतु विल पावर नहीं है हमारे पास उन बातों को समझने की और जीवन में लाने की। तो विल पावर कहां से आएगी, वो इससे आती है, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर, अर्थात जिसमें राजयोग, मेडिटेशन, मेंटल केयर और फिजिकल, तीनों का कॉम्बिनेशन, उससे आपके अंदर जो हेल्दी भोजन, हेल्दी बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बैलेंस डाइट, नेचुरोपैथी नहीं, नेचर के और नहीं, बैलेंस डाइट, इसमें सारी चीजें हों, बैलेंस एक्सरसाइज है ना। हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल अगर 45 मिनट आपने सैर कर ली खुली हवा में पेट साफ करने के बाद नहाने के बाद, तो आपने सब कुछ कर लिया। आपको अलग से प्राणायाम करने की, कोई आसन करने की, कोई स्ट्रेचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ब्रिस्क वॉक कर लिया, आपने सब कुछ कर दिया नहाने के बाद, पेट साफ करने के बाद, नहाने के बाद और सनराइज के बाद, और समय पर सो गए। सोने का भी समय है, हमारे अंदर घड़ी है, उस घड़ी के अनुसार आप समय पर सो जाइए, समय पर उठ जाइए, तो आप बस फर्स्ट क्लास आपको नींद आएगी। दिन में फिर आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, जरा भी सुस्ती नहीं आएगी। और जो भी इवन चाय पीना भी एक एडिक्शन है ना, चाय कॉफी और टबैको और शराब है ना, ऐसी चीजों को से बचना। तो व्हाट इज थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर, ये क्या है? आज हमारी जो साइंस, आज जो हमारी मेडिकल साइंस है वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बेस्ड है कि हाँ हमें पता है कि इसके इतने पेशेंट पर ट्रायल किए गए, उसके रिजल्ट हैं ये वाले, ये एविडेंस है। और कोई भी पर एविडेंस, कोई भी एक मेडिसिन 100% इफेक्टिव नहीं है। हम कहते हैं एस्प्रिन खाओ हार्ट अटैक नहीं होगा, कितने लोगों को नहीं होगा, कितनी प्रोटेक्शन है उससे? सब 35% प्रोटेक्शन में नहीं है कि 35% लोगों को हार्ट की बीमारी से बच जाए खाली डिस्प्रिन खा के। बहुत सारे डिस्प्रिन खाने के बाद भी हार्ट अटैक आते हैं, एविडेंस है उससे हार्ट को फायदा होता है, किंतु 100% फायदा होता है ऐसा नहीं है। 65% लोगों को फिर भी हार्ट अटैक आ सकता है एस्प्रिन खाने के बाद भी। कोई दवाई दुनिया में ऐसी नहीं जो आपको 100% प्रोटेक्शन दे दे। तो एविडेंस बेस्ड है, इससे आप ट्रूथ को रियलाइज कर सकते हो। तो इसमें 100% नहीं है, किंतु स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता उसमें क्या है, उसमें एक्सपीरियंस बेस्ड है। आपको फेथ है कि ये मेरा भगवान है, ये मुझे मेरी जरूर मदद करेगा। इसमें रिजल्ट कितना है? इसमें रिजल्ट 100% है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड, मुझे हर बार मुझे सहायता दी है, हर बार मुझे मदद मिली है, जब जब मैंने उसको याद किया मुझे मदद मिली है। तो दोनों के बैलेंस से, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी से ही साइंस का जन्म होता है, साइलेंस का जन्म होता है, साइलेंस से ही साइंस का जन्म होता है। तो दोनों को मिला करके इसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हार्मनी एट ऑल द लेवल्स, तीनों हर लेवल पे हार्मनी हो जाए। और ये जो है, ये है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग एंड हेल्थ। इंसान क्या है? WHO डेफिनेशन था हेल्थ, हाँ, ये योगा माना, योगा का मतलब है, ये मतलब है योगा का माना यूज माना जोड़ना, मींस टू योग, दो चीजों को, योगा का मतलब ही दो चीज को जोड़ना है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जोड़ना, इसमें थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर का मतलब ही क्या है, इसमें स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जोड़ा गया है, ठीक है। और ये रियल योगा है। तो WHO की जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या डेफिनेशन थी हेल्थ की, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल, और 97 में एक वर्ड ऐड हुआ स्पिरिचुअल, पहले हटा लिया गया था 1967 में, फिर उसके बाद दोबारा ऐड किया गया। तो स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, कि स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप फिजिकली, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ हैं। खाली बीमारी नहीं है इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहते, किंतु आज जो है ये डेफिनेशन मॉडर्न वर्ल्ड मानता है इस बात को कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग इज अ कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बाद में बात करेंगे। स्पिरिचुअल एनर्जी का बेसिकली मतलब है सात एनर्जी है आत्मा की अपनी, जो आपने सुनी भी होंगी अभी सुबह क्लास में सुनाई गई होंगी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। इसको हम एक सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं, केपी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, केपीपी LHBP, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लेस एंड पावर्स, हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर मेंटल एनर्जी कहां से आती है, मन माना टीम, मन में चार एस्पेक्ट्स होते हैं, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो चार बातें, चारों चीज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। और फिर फिजिकल एनर्जी कहां से आती है, एक तो भोजन से आती है, आप सही भोजन, आपको थक गए भोजन खा लीजिए, ग्लूकोज पी लीजिए, आपको ताकत आ जाएगी, थोड़ा सैर कर लीजिए खुली हवा में, ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, थक गए हैं सो जाइए चार घंटा, फ्रेश हो जाएंगे। चौथा, सिर में दर्द हो रहा है, एक गोली खा लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सिर भारी भारी लग रहा है, एक गोली खा लीजिए, बीपी ठीक हो जाएगा। चौथा दवाइयां। तो फिजिकल एनर्जी कहां से आती है? भोजन से, सैर से, नींद से और दवाइयों से। ठीक है, तो इन तीनों के कंटिन्यूम को ही हम इंसान कहते हैं। आपके पास फिजिकल एनर्जी ठीक है, आप भोजन ठीक करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, सैर भी करते हैं, नींद भी अच्छी करते हैं, दवाई भी खाते हैं, किंतु आपका मन टीम आपकी नेगेटिव है, आपके विचार हमेशा नेगेटिव, भावनाएं नेगेटिव हैं, आपके मन में बुरी बुरी बातें याद आती रहती हैं, आपके मन में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, शांति प्यार खुशी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? तीनों के कॉम्बिनेशन को इंसान कहते हैं। किंतु जब दो चीज ना रहे, सिर्फ फिजिकल एनर्जी रहे, तो क्या कहेंगे उसको? मन भटक रहा है, आप सोचना हां। और तीनों ही खराब हो जाए तो फिर क्या कहेंगे, आप सोचना हां। तीनों ही खराब हो गई, इंसान बस खाता है और सोता है और उठ के गालियां देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपने आप सोचना हां। वैसे दूसरे को मैं हैवान कहते हैं, जिसके मन में शांति ना हो, प्यार ना हो, खुशी ना हो, मन भटकता हो, तीसरे को आप जानते होंगे। ठीक है, तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। हेल्थ कोई स्टेट नहीं है, हेल्थ इज अ डायनेमिक प्रोसेस, हर क्षण बदलता है। एक विचार अभी बैठे बैठे आपको मन में खराब आ गया, वो पुरानी बात याद आ गई, क्या होगा? दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, है ना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? हेल्थ रहेगी? फिर हेल्थ खत्म हो गई, है ना। कोई गलत चीज अभी बैठे बैठे खा लो, तबीयत खराब हो जाएगी, तुरंत तबीयत खराब हो जाएगी ना? तो रात को नींद नहीं की, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। ये डायनेमिक प्रोसेस है, राइट। और आत्मा और थोड़ी सी मेमोरी सेल्स ब्रेन में, वो नहीं बदलती हैं, वो सदा कंटिन्यूअस है लाइफ के साथ। बाकी 98% सेल्स हमारी बॉडी की बदलती रहती हैं, तीन महीने से एक साल के अंदर। हमारी स्किन बदल रही है, हमारा हार्ट बदल रहा है, हमारी बोन्स बदल रही हैं, इवन बोन्स भी बदल जाती है, एक से दो साल में पूरी बोन्स रिप्लेस हो जाती है, पूरा हार्ट नया लग जाता है, सेल्स मरती रहती है, नई पैदा होती रहती है, पूरा ब्लड बदल जाता है। किस आधार पर? जैसी आपकी टीम होती है, जैसे आपके मन में स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प होते हैं, उसके आधार पर। अगर आप आज सोच लो कोई आपको गलती से बता दे कि आप तीन महीने मरने वाले हो, आपको ऐसी बीमारी अंदर पैदा होगी, क्या होगा? और आप उस पर विश्वास कर लो तो क्या होगा? तीन महीने में क्या होगा? चेहरा ही बदल जाएगा ना, सारी बॉडी ऐसे लगेगी जैसे बस गया है ना। और किंतु अगर आप 100% एक मन में संकल्प, नहीं मैं आप मरने वाले हैं, किंतु आपकी ऐसी हालत बना लो कि नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे ठीक होना है, तीन महीने में क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक मैं आपको फैक्ट यहां बता दूं, हमारा एक तो कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, किंतु हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, किंतु उसमें अगर 0.001% भी एक आपके मन में संशय है ना, शक है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा क्या पता हो ना हो, क्या पता ना हो, सिर्फ 0.001% है, तो आपको क्या होगा? आपका आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तब मिलती है जब आप 100% आपके मन में निश्चय होता है, विश्वास होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उससे फिर आपके मन में एकाग्रता आती है, और एकाग्रता आने से फिर दृढ़ता आती है, दृढ़ता से सफलता होती है। तो निश्चय, विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता, ये चार चीज इंसान को सफलता दिलाती है। पर इसमें 100% चाहिए। अगर एक थोड़ा सा भी आपके मन में शक है तो आप सफलता को नहीं पा सकते हैं। तो आपके अपने हाथ में, अपने हार्ट को बदलना, अपनी बॉडी को बदलना, अपने मन को बदलना, सब कुछ आपके अपने हाथ में है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और बॉडी हमारी 70 से 80 हजार बिलियन कोशिकाओं से बनी है, और हर कोशिका में लगभग 1 लाख रिएक्शन एक सेकंड में होते हैं। 1 लाख रिएक्शन एक सेकंड में गुना 80 हजार बिलियन कितना हो गया? एक सेकंड कितना होता है? हो गया है ना। और इसमें कितने सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, और बॉडी इस टॉक्सिन्स को भी वॉश कर देती है एक सेकंड में। और किंतु जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी एक एक कितनी कोश कितनी पॉइजन कितना पॉइजन बनाती है, जो पॉइजन एक्स्ट्रा बनाती है वो आप साफ नहीं कर पाते बॉडी। वो पॉइजन आपके टारगेट ऑर्गन में इकट्ठा, वो आपकी लंग्स हो सकते हैं, वो आपका हार्ट हो सकता है, आपका स्टमक हो सकता है, आपकी बोन्स हो सकती हैं, आपका बहनों को ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है, यूट्रस हो सकता है, वहां कैंसर हो जाएगा या आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी या पस पड़ जाएगी, इस तरह से बीमारी का जन्म होता है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है सबसे थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर का, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना, हील प्लस डाई, हील डाई सेल्फ, अर्थात यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको हील कर सकता है, वो कौन है? डॉक्टर नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, मनमोहन सिंह जी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, कौन करेगा? भगवान भी नहीं है, वो कौन है? सिर्फ आप है। हर एक अपनी हेल्थ के लिए स्वयं जिम्मेवार है। तो आप सोचिए, जब आप जल्दी करते हैं तो आप हीलिंग करने के डैमेज कर रहे हैं, जब आप गुस्सा कर रहे हैं हीलिंग कर रहे हैं डैमेज कर रहे हैं, जब आप सीरियल देख रहे हैं हीलिंग हो रही है डैमेज हो रहा है, जब आप कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं दूसरे की बुराई सुन रहे हैं हीलिंग हो रही है डैमेज हो रहा है, जब आप पकोड़े खा रहे हैं हीलिंग हो रही है डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है? अपनी गाड़ी में कभी डाल के देखना पकोड़े, है ना, या कोल्ड ड्रिंक डाल के देखना, है ना, फिर गाड़ी चला के देखना चलेगी? इस गाड़ी में, इस गाड़ी को जो मर्जी डाल देते हो, जो आया दिल में डाल देते हो, जैसे कचड़े का डब्बा नहीं होता, जैसे जो मर्जी डाल दो, और कहते हमारी गाड़ी में धुआं लगता है, धुआं आता है, चलती नहीं है, आवाज करती है, नहीं आया धुआं, नहीं आया आवाज नहीं करेगी। और फिर अगर आपको खुद ये, मैं समझता हूं आज इस लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो मैं समझ, मेरा आना सफल हुआ, कि आप सोच लीजिए, जो सोच रहे हैं उससे हीलिंग हो रही डैमेज हो रहा है, जो देख रहे हैं उससे हीलिंग हो रही डैमेज हो रहा है, जो खा रहे हैं उससे हीलिंग हो रही डैमेज हो रहा है, जो बोल रहे हैं उससे हीलिंग हो रही डैमेज हो रहा है, जो सुन रहे हैं उससे हीलिंग हो रही डैमेज हो रहा है, ये टोटल टोटल इसका जोड़ सारे दिन में, मतलब आपका आपका बता देगा कि आप हीलिंग करते हैं, आप हेल्दी रहेंगे या बीमार होने वाले, चॉइस आपकी है। तो हेल्दी मींस स्वस्थ, स्व मना इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, और स्था मींस कॉन्शियस, सो हेल्दी मींस सोल कॉन्शियस, एवर हेल्दी मींस ऑलवेज सोल कॉन्शियस। ये कविता बनी थी, आपने सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे माहेश्वर जी, मैं 5-10 मिनट और ले सकता हूं, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर डिले हो जाएगा नहीं तो हेल्दी, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो कविता बनी थी, इसी कारण से बनी थी, इसकी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये आत्मा के लिए कहा गया था। और अप अबाउ द वर्ड्स ऑफ हाई लाइक ए डायमंड, लिख दिया इन द स्काई, पर होना चाहिए था अबाउ द स्काई, वो परमात्मा के लिए कहा गया था, है ना। कविता सबने गाई, किसी का मतलब किसी को पता नहीं था ना, तो आज इस मतलब को याद करना है। और ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें इसमें है, टू हील दाई सेल्फ वन नीड्स सेल्फ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान, एंड ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम गॉड, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर, अर्थात पवित्र है। और परमात्मा कैसे नॉलेज देता है? थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सूचना देता है, पढ़ाता है और समझाने भी देता है, पहले अपने बारे में देता है कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, मेरा आपसे क्या संबंध है और मैं क्या करता हूं, फिर आत्मा के बारे में देता है, फिर आत्मा के बाद मन के, मन के बारे में, मन का क्या रोल है, फिर बॉडी के बारे में बताता है, बॉडी के बारे में बताता है कैसे आपको अपने शरीर को चलाना है। इन तीनों एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, तीनों की हार्मनी जब होती है, इससे आप एवर हेल्दी और एवर हैप्पी रह सकते हैं। और इंसान, ह्यूमन बीइंग, दो शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है, लैटिन शब्द है ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब सॉयल और बीइंग माना सोल। देखिए स्पेलिंग में, देखिए स्पेलिंग आई और यू, जब आप सॉयल कॉन्शियस माना बॉडी, ये बॉडी आउटर सेल्फ हमारा, जब आप आई जब सोयल कॉन्शियस बनते हैं तो आपके अंदर आईनेस और माइनस आती, आईनेस माना ईगो और माइनस माना अटैचमेंट, तो मैं और मेरापन आता है। और जब आप सोल कॉन्शियस बनते हैं तो आपके अंदर यूनिवर्सल, यू माना यूनिवर्सल, आप सारे विश्व के बारे में सोचते हैं, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, ये इनर सेल्फ कॉन्शियस। ये आउटर सेल्फ कॉन्शियस जब होते हैं तो ये तीनों चीजें, बॉडी रोल और मटेरियल, तीनों के तीनों, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, ये रोल कॉन्शियस है, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं मां बाप हूं, ये भी रोल कॉन्शियसनेस है। कोई पैदा होता है तो मां बाप नहीं होता है, पैदा होता है डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। ये रोल है हम समाज में प्ले करते हैं। और मटेरियल जो भी आपके पैसा है, कम या ज्यादा, मैं गरीब हूं, मैं बहुत अमीर हूं, ये जो चीजें हैं ये सब अनस्टेबल है, आज है कल नहीं है। इनसे इससे डर पैदा, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, इससे फिर पांच विकार पैदा होते हैं। पांच विकार कुछ और नहीं है, रिएक्शन है इनसिक्योरिटी के लिए। मन में जो असुरक्षा की भावना पैदा होती है इसके लिए रिएक्शंस पैदा, लोअर ब्रेन हमारा रिएक्शन करता है। एक अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, है ना। और इनके ये पांच पांच दो दो बच्चे हैं आगे, जल्दी करना, ईर्षा द्वेष करना, आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता और भय। इससे विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। नॉर्मली हम 15 विचार एक मिनट में करते हैं, किंतु जब आप चिंता में हैं, भय में हैं, जल्दी में हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ये नेगेटिव विचार इससे पैदा होते हैं और इससे आपके विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। 15 से की बजाय 20, 30, 35, 40 विचार एक मिनट में चलते हैं और उससे आपके अंदर केओस होता है, उससे आप स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं। और जब आप तनाव में, मूड आपका खराब होता है, तो आप रॉन्ग फूड खाते हैं, फिर आपके मन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो खुशी के लिए आप खाना तला हुआ खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, मिठाई खाएंगे, उसको खुश करने के लिए खुशी खाने में ढूंढ रहे हैं, शांति जंगलों में ढूंढते हैं, प्यार शरीर में ढूंढते हैं, आनंद फिल्मों में ढूंढते हैं, प्योरिटी पवित्रता डिटर्जेंट में ढूंढते हैं, शैंपू में ढूंढते हैं, और ज्ञान किताबों में ढूंढते हैं, और शक्ति जिम में जाके ढूंढते हैं, है ना। नहीं तो इस तरह से हमारे अंदर फिर रॉन्ग फूड और रॉन्ग स्लीप, देर से सोना, देर से उठना। और फिर ऐसा आदमी जो देर से सोएगा, देर से उठेगा, वो क्या एक्सरसाइज करेगा? क्या 8 बजे सो के उठेगा तो एक्सरसाइज कर पाएगा? शाम को एक्सरसाइज करने जाते जिम में, जो हार्ट अटैक 5 साल में आना था वो 1 साल में आ जाता है। और फिर टेंशन को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? एडिक्शंस, चाय पीते हैं, शराब पीते हैं और सिगरेट बीड़ी पीते हैं। लोग उनको कहते हैं, टेंशन में हो ना, ये पियो ना, एक घूंट पियो, देखो सब बोतल अंदर गम बाहर, नहीं पी के तो देखो, टेंशन है तो सोचा शायद हो जाए, ठीक हो जाए, फिर आदत पड़ जाती है ना। इससे फिर हमें ये बीमारी आती है। बीमारी का मतलब क्या? बी माना डर, मारी माना बने रहना, बीमारी माना डर बने रहना। अगर आपके अंदर फियर है और डर इससे आता है, अनस्टेबिलिटी से, इनसिक्योरिटी से, इसकी बजाय अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस हैं, सोल कॉन्शियस हैं, तो क्या होगा? आत्मा के 7 गुण हैं, ये आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। तो इससे विचार, ये नेचुरल आत्मा के गुण है। जितनी शांति, ज्ञान माना ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन माना मेरे सब संबंध उसके साथ हैं, डी फॉर ड्रामा, ये संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब एक्टर्स हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार हम सब कार्य कर रहे हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, या मेरा पत्नी या पति या बच्चा है, मुझे दुख दे रहा है, और मैं उसको बोलूं भगवान को, भगवान इसको ठीक कर दो ना, तो भगवान ठीक करेगा उसको? ठीक नहीं करेगा। भगवान कहेगा नहीं, दुख तो तुम्हें दिया हुआ है, दे इसको, मिले, वापस मिले, है ना, कि तो आपको सहन शक्ति दे देगा, ताकि आप वो दुख भी पूरा हो जाए और आप सहन भी कर लो। तो इसलिए भगवान इस तरह से डायरेक्ट करता है, इसलिए जो हुआ अभी तक क्या हुआ? अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जब आप करते हो तो उससे प्योरिटी आती है, उससे शांति, उससे पवित्रता आती है, मन शुद्ध हो जाता है, तो प्योरिटी से शांति आती है, विचार और कम हो जाते हैं, शांति से प्रेम आता है। प्रेम क्या है? प्रेम माना अपने आप की रियलाइज, अपनी गलतियों को रियलाइज करके दूसरों की केयर करना और आदर से केयर करना, रेस्पेक्ट, केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। एक पत्नी अपने पति की बहुत केयर करती है, खाना बनाएगी, सब कुछ करती है, तो हर समय डांटती रहती है उसको, तो पति प्यार का महसूस करेगा क्या? या बच्चे की करेगा, केयर करती है तो बच्चा प्यार महसूस करेगा क्या? नहीं, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करें। वो एक अलग इंडिविजुअल है, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूं, केयर एक दूसरे की हम करते हैं, किंतु उसको रेस्पेक्ट भी दें, तो उसे कहते हैं प्यार। उसमें प्यार की फीलिंग आती है और प्यार से खुशी मिलती है, खुशी से आनंद आता है और आनंद से शक्तियां पैदा होती हैं, 8 शक्तियां जो आपको बताई गई होंगी। और इससे आप क्या महसूस करते हैं? इससे इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वैल्यूज पैदा होती हैं, सत्यता, निर्भयता, नम्रता, सहनशीलता, संतुष्टता, एकाग्रता, दृढ़ता, धैर्यता, ये सब इससे पैदा होती हैं। और इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, क्योंकि विचार ही चलने कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, 3-4 विचार एक मिनट में चलेंगे, डेल्टा रिदम हो जाती है आपकी, और उससे आपको आप अब आप खाने ये जीने ये खाने के लिए जी रहे थे और ये जीने के लिए खाते हैं, जीभ के स्वाद के वश में नहीं खाते हैं, जो हेल्थ के लिए जरूरी है वो खाते हैं, और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठ जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और टबैको को शराब को मना कर सकते हैं। इस तरह से हेल्दी और हैप्पी लाइफ। इनक्यूरेबल का मतलब इन प्लस क्यूरेबल, इट डज नॉट मीन इट इज नॉट क्यूरेबल, इट मीन्स इट इज इन प्लस, इट इज क्यूरेबल इफ यू गो इन, अपने अंदर जाओ तो क्योर कर सकते हो। कोई बीमारी भी, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई ब्लॉक हो, सब खुल सकते हैं। कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द, कोई बीमारी भी आप ठीक कर सकते हैं, और यही स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ। जब रेशियो एक से अधिक हो जाता है तो फिर आप तनाव में आते हैं। प्रेशर को आप बदल नहीं सकते हो, किंतु इसको आत्मिक शक्ति को जितना चाहो बढ़ा सकते हो। कैसे? एबीसीडी के द्वारा। ये बताया ना जो एबीसीडी, आपको जितना ज्यादा एबीसीडी को बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो, अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, उतना आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी और आप तनाव मुक्त बन जाएंगे, अर्थात बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। बेगमपुर देखा आपने? नहीं देखा? गुड़गांव में? अरे यहां बेगमपुर है ना, बेगम, जहां कोई बेग, जहां कोई गम ना हो, है ना। तो आप भी बेगमपुर के बादशाह नहीं है क्या? ये देखिए, आत्मा का एनाटॉमी जैसे बॉडी की एनाटॉमी होती है, आपको बताई गई होगी। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आप जानते हैं। और ये फरिश्ता जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, बेसिकली कुछ और नहीं, टीम है, हमारे विचारों से बनता है, हमारी भावनाओं से बनता है, और ये 7 एनर्जीज हैं जो बताई गई आपको, और ये आत्मा ऐसे शरीर को नरिश करती है। 7 एनर्जी बॉडी के हर कोशिका के लिए आवश्यक है, मन इसका माध्यम है। जैसे मुझे आपको ये देना है तो मैं आपके हाथ से दूंगा, और लेना है तो कैसे देंगे? हाथ से लेंगे ना वापिस। तो इस तरह से ही आत्मा मन के माध्यम से, अगर आत्मा को शरीर को हार्ट को लव देना, प्यार कैसे देगी? प्यार की बातें स्मृति में लाए तो हार्ट को लव पहुंचेगा। प्यार का एटीट्यूड रखे अपने प्रति, दूसरों के प्रति, तो लव हार्ट को पहुंचेगा। प्यार की भावनाएं पैदा करे तो प्यार हार्ट को पहुंचेगा, है ना। प्यार के विचार पैदा करे तो हार्ट को लव पहुंचेगा। तो आत्मा वो प्यार को कैसे कैसे ट्रांसमिट करेगी? टीम के थ्रू, है ना, विचारों के थ्रू, भावनाओं के थ्रू। ऐसे शांति लंग्स को देनी है तो कैसे देगी? उसी शांति के विचारों से देगी। खुशी पेट को देनी है तो कैसे देगी? खुशी के विचारों से। तो इस तरह से आत्मा एक एक चीज, जैसे लिखा हुआ है, टाइम नहीं है, मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं जाता हूं, तो आपको यह करने का है। यह हमारा एक्शन प्लान है। हमारे अंदर जो, अगर हम 4 से 5 के बीच में 15 मिनट, आधा 20 मिनट आत्मा, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें, तो क्या होगा? आपके अंदर 7 एनर्जी, परमात्मा 7 गुणों का सागर है, और वो आपके अंदर आ जाएंगे। और मन में जो है, फिर ये 4 बजे आपकी एनर्जी आ गई सेट, आपके हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स बैलेंस में रिलीज हो जाएंगे, और फिर 8 बजे तक आप चुप रहें, और 100% पॉजिटिव टीम को, जैसे जो बाबा की मुरली है वो 100% पॉजिटिव टीम है, उसको अगर आप 7 से 8 मुरली सुने तो एनर्जी बॉडी की सेल्स में आ जाएंगी। अब बॉडी के बाहर कैसे आएगी? उसके लिए आप शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, संतुलित भोजन खाएं, समय पर खाएं, चबा चबा के खाएं, उसमें बातें ना करें। सात्विक भोजन ना, जो भोजन आपके आपके अंदर 7 गुणों को बढ़ाए। रासिक भोजन, जो आपके अंदर आलस्य, अलबेलापन पैदा करे, तले हुए पदार्थ, पराठा, पकौड़ा, समोसा, मिठाइयां। तामसिक पदार्थ, जो कि आपके अंदर उत्तेजना, नॉनवेज खाना, बासी खाना, लहसुन प्याज खाना, ये है जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करेंगे, चिंता पैदा करेंगे। और दवाई खाएं समय पर, तो एनर्जी आपके बॉडी के निकल के बाहर शांति, प्यार, खुशी आपके आसपास इकट्ठी हो जाएगी, उससे आपका आभामंडल बन जाएगा, और इस तरह से आप हेल्दी, तीनों एनर्जी की हार्मनी हो जाएगी, आप हेल्दी और हैप्पी बन जाए। इसी को राजयोग कहते हैं। और ये जो है, मैं आपको लास्ट में, हमारा रिसर्च था, मैं आपको लास्ट में ले जाता हूं, एंजियोग्राफी कैसे ब्लॉक खुले थे वो दिखा देता हूं। ये सारी बातें, ईजी वगैरह की बात सब, इसको मैं स्किप कर जाता हूं। ये सारी रिसर्च हमने की थी, हर बात की स्टडी की थी। 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुले थे। देखिए, ये 90% ब्लॉक खुल गया है, ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक सारा खुल गया है, ये 100% ब्लॉक खुल गया है, ये 100% खुल गया है, ये मल्टीपल ब्लॉक सारे खुल गए हैं, ये 80% और 90% ब्लॉक खुल गए दोनों। ये इस पेशेंट को 2 हार्ट अटैक आए थे और 2 दीवारें खराब हो गई थी, हार्ट एनलार्ज हो गया था, 30% इजेक्शन फ्रैक्शन रह गया था, और देखिए पूरा अभी हार्ट ऐसे नया, नई मसल्स बन गई हैं, जैसे 45% हो गया, ये 80% ब्लॉक खुला। इसी पेशेंट की 20% इंजेक्शन फ्रैक्शन रह गई थी, इसने दोबारा से फॉलो किया, देखिए ये ब्लॉक खुल गया, ये पूरी हार्ट नहीं बन गई और ये देखिए 100% ब्लॉक खुल गया। कंट्रोल ग्रुप जिन्होंने राजयोग का मेडिटेशन फॉलो नहीं किया, सिर्फ डाइट एक्सरसाइज को फॉलो किया था, देखिए ब्लॉक बढ़ गए। हर ब्लॉक के पीछे हमारे मन का कारण है, हमारे उन विचारों से वहां की आर्टरी डैमेज होती है, दीवार डैमेज होती है, वहीं पर ब्लॉक होता है। अगर आप मन को ठीक नहीं करेंगे तो आपके ब्लॉक, देखिए ब्लॉक बढ़ गया। ये देखिए 100% ब्लॉक इसको था एक लेडी को, ये देखिए खुल गया, ये खुल गया देखिए। तो बेसिकली क्या करना है आपको, स्पिरिचुअल केयर सबसे पहली बात, जो भी काम करें अपने को आत्मा समझ के करें, घर में बाहर जो भी काम करें, और इसके लिए राजयोग मेडिटेशन सुबह 4 बजे करें आधा घंटा, और आनंद की स्थिति को अनुभव करें। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे, और मेंटल केयर 8 बजे तक चुप रहें, 7 से 8 परमात्मा के महावाक्य सुने, ऐसे आपका एड्रेनल हार्मोन कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा, और सारा दिन आपको शांति प्यार खुशी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी, आप अच्छा काम कर पाएंगे। और फिजिकल केयर, ईट नेचुरल फल सब्जियां, अंकुरित रोटी सब्जी दूध ये समय पर लें, चबा चबा के खाएं, सुबह सैर करें आधा 45 मिनट, हो सके तो शाम को भी सनसेट के समय आधा घंटा सैर कर लें, और 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, और कभी आपको आवश्यकता है दवाई खाने की दवाई भी खा लें, क्योंकि डॉक्टर्स का भी आपके साथ जो अकाउंट है वो पूरा हो जाए। ओम शांति।
हमने आपको पहले ही बोला था एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस में कि ये कॉन्फ्रेंस अवेयरनेस लाने के लिए है लाइफ में। अभी आपने समझा, डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी चीजें आपको बता दी कि मन को, आत्मा को, शरीर को, सब को जो है तीनों का ख्याल करेंगे तब ये बात होगी। अभी तक हम सिर्फ शरीर का ख्याल करते थे, तो तीनों आपके सबके समझ में आया, सोल माइंड बॉडी तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस है। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, सबकी तरफ से तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं।